नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान औरंगाबाद, बांका, भागलपुर, गया, जमुई, कटिहार, मुंगेर, नवादा और रोहतास समेत 17 जिलों में तेज हवा के साथ अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में 32वें अंतर्राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्री सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इको पर्यटन के विकास के लिए नवादा जिले के ककोलत जलप्रपात में पर्यटकीय सुविधाओं का आज करेंगे लोकार्पण। और आकलन वर्ष 2024-25 के लिए 31 जुलाई तक रिकॉर्ड 7 करोड़ 28 लाख आयकर रिटर्न दाखिल किए गए। अब समाचार विस्तार से। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान औरंगाबाद, बांका, भागलपुर, गया, जमुई, कटिहार, मुंगेर, नवादा और रोहतास जिले में कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अरवल, बेगूसराय, भागलपुर, गया, जहानाबाद, कैमूर, खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर, नालंदा, नवादा, रोहतास और शेखपुरा जिले में भी कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। विभाग ने अपने विशेष मौसम बुलेटिन में इस अवधि में लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। विभाग ने कहा है कि राज्य के शेष हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की भी संभावना है। साथ ही मेघ गर्जन और वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया है कि राज्य में अगले एक सप्ताह तक मानसून पूरी तरह सक्रिय बना रहेगा।
पूरे बिहार में अगले 24 से 48 घंटों में वर्षा होने एवं दक्षिण पूर्व भाग के एक दो स्थानों पर भारी वर्षा का भी पूर्वानुमान। तापमान में कमी एवं व्यापक क्षेत्र में वर्षा होने के कारण किसानों के लिए लाभदायक होगा।
बिहार राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने अत्यधिक भारी बारिश की आशंका को देखते हुए संबंधित जिलाधिकारियों को अलर्ट जारी किया है। विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी अविनाश कुमार ने जिलाधिकारियों से किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक तैयारी करने के साथ ही अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने इस दौरान किसी भी सहायता के लिए टोल फ्री नम्बर 1070 और हेल्पलाइन नम्बर 0612-2294-204 और 2294-205 जारी किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में 32वें अंतर्राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्री सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। वे इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। भारत में इस सम्मेलन का आयोजन 65 वर्ष बाद हो रहा है। एक रिपोर्ट।
6 दिन के सम्मेलन का विषय है संवहनीय कृषि खाद्य प्रणाली की ओर रूपांतरण। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण, बढ़ती उत्पादन लागत जैसी वैश्विक चुनौतियों को देखते हुए संवहनीय कृषि की बढ़ती आवश्यकताओं पर ध्यान देना है। ये सम्मेलन वैश्विक कृषि चुनौतियों के प्रति भारत के सक्रिय दृष्टिकोण को उजागर करेगा और कृषि अनुसंधान नीति में देश की प्रगति दर्शाएगा। सम्मेलन युवा अनुसंधानकर्ताओं और इस क्षेत्र के अग्रणी पेशेवरों को अपने विचार रखने और वैश्विक प्रतिभाओं के साथ जुड़ने का अवसर देगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मुकेश कुमार।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज इको पर्यटन के विकास के लिए नवादा जिले के ककोलत जलप्रपात में पर्यटकीय सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही 1.5 वर्षों से बंद जलप्रपात को लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। 16 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक तकनीक से तैयार ककोलत जलप्रपात के आसपास पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए प्राकृतिक कुंड, आकर्षक मुख्य द्वार, 6 कैफेटेरिया, पर्यटन सूचना केंद्र और प्राकृतिक उपचार केंद्र समेत अन्य संरचनाओं का निर्माण किया गया है। इस कार्यक्रम के दौरान पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ प्रेम कुमार, सांसद विवेक ठाकुर और गोविंदपुर विधायक मोहम्मद कामरान समेत अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री श्री कुमार जिले के वारिसलीगंज में सीमेंट ग्राइंडिंग इकाई का भी शिलान्यास करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री एक अन्य कार्यक्रम में नालंदा जिले के हरनौत प्रखंड के द्वारिका बीघा गांव में पुल का उद्घाटन करेंगे। कटिहार से कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने लोकसभा में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा में भाग लेते हुए आम लोगों के लिए चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता पर जोर दिया है। चर्चा की शुरुआत करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि इस वर्ष के बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए पर्याप्त आवंटन नहीं किया गया। उन्होंने दवाओं की ऊंची कीमतों पर कहा कि लोग महंगी दवाएं खरीदने में असमर्थ हैं। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि उनकी पार्टी अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के अंदर उपवर्गीकरण के पक्ष में नहीं है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि उनकी पार्टी का मानना है कि जब तक समाज में छुआछूत जैसी प्रथा मौजूद है तब तक अनुसूचित जाति जनजाति श्रेणियों की सब कैटेगरी में आरक्षण और क्रीमी लेयर जैसा प्रावधान नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय से अपने फैसले पर पुनर्विचार का आग्रह भी किया है। इधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी इस फैसले को संविधान के मूल भावना के विपरीत बताया है। आकलन वर्ष 2024-25 के लिए 31 जुलाई तक रिकॉर्ड 7 करोड़ 28 लाख आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ये पिछले वर्ष की तुलना में 7.5% अधिक है। इस वर्ष बड़ी संख्या में आयकर रिटर्न भरने वालों ने नई कर व्यवस्था को चुना है। 5.27 करोड़ रिटर्न नई कर व्यवस्था में और 2.01 करोड़ पुरानी कर व्यवस्था में भरे गए हैं। इस वर्ष 31 जुलाई तक 58,57,000 लोगों ने पहली बार रिटर्न दाखिल किया। सोशल मीडिया पर करदाताओं को शीघ्र रिटर्न भरने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए जनसंपर्क अभियान चलाए गए थे।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Patna पर जा सकते हैं। प्रदेश में सिपाही के 21,351 पदों के लिए भर्ती परीक्षा 7 अगस्त से 28 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। सभी जिला मुख्यालयों के 545 केंद्रों पर 6 अलग अलग तिथियों पर ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने बताया कि परीक्षा में लगभग 18 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि 7 अगस्त को होने वाली परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। गौरतलब है कि सिपाही भर्ती परीक्षा अक्टूबर 2023 में ली गई थी जिसे विभिन्न कारणों से रद्द कर दिया गया था। पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने कहा है कि निजी कोचिंग संस्थानों के निबंधन के लिए पोर्टल बनाया जाएगा। इसके माध्यम से ऑनलाइन निबंधन और आवेदन के साथ ही भुगतान की सुविधा दी जाएगी। पटना में संचालित विभिन्न कोचिंग संस्थानों के निरीक्षण के बाद उन्होंने कहा कि निबंधन के लिए कई तरह के प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। संतुष्ट होने के बाद ही कोचिंग संस्थानों का निबंधन स्वीकार्य किया जाएगा। पटना के ज्ञान भवन में आज से 2 दिवसीय मखाना महोत्सव की शुरुआत हो रही है। कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने कहा कि महोत्सव का उद्देश्य मखाना उत्पादन की आधुनिक तकनीकों से किसानों को अवगत कराना है, साथ ही इसके व्यापार के नए आयाम की तलाश करना भी है। उन्होंने कहा कि इस दौरान मखाना के विभिन्न उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री भी होगी। महोत्सव में मखाना व्यंजन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। कृषि मंत्री मंगल पांडेय इस महोत्सव की शुरुआत करेंगे। इधर जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि राज्य सरकार मखाना की बिक्री बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि दुनिया में कुल मखाना उत्पादन का करीब 85% मिथिला में होता है। गौरतलब है कि मिथिला मखाना को GI टैग प्राप्त है। देश और विदेश में भी इसकी मांग है। आकाशवाणी संगीत समारोह आज से नई दिल्ली में आकाशवाणी परिसर में शुरू हो रहा है। 2 दिन के इस समारोह का आयोजन आकाशवाणी के रंग भवन में शाम 5:30 बजे से होगा। पंडित राजेंद्र प्रसन्ना, पंडित जयतीर्थ मेवुंदी और पंडित विश्व मोहन भट्ट सहित देश के जाने माने संगीतज्ञ आयोजन में अपनी प्रस्तुतियां देंगे। दिल्ली के अतिरिक्त आकाशवाणी समारोह का आयोजन अलग अलग तारीखों पर पटना, हैदराबाद, बेंगलुरू, भोपाल, चेन्नई और रांची सहित कई शहरों में भी किया जाएगा। लोक सेवा प्रसारक के आदर्शों पर संस्थापित आकाशवाणी देश के सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और विविध संस्कृति को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। पेरिस ओलंपिक खेलों के आठवें दिन आज भारत की नारी शक्ति का प्रदर्शन होगा। भारतीय खिलाड़ी निशानेबाजी, तीरंदाजी, मुक्केबाजी, नौकायन और गोल्फ की स्पर्धा में अपनी मजबूत दावेदारी पेश करेंगे। एक रिपोर्ट।
शुक्रवार का दिन भारत के लिए कुछ अच्छे परिणाम लेकर आया। बैडमिंटन की पुरुष एकल स्पर्धा में लक्ष्य सेन ने चाइनीज ताइपेई के टियान चेनचाओ को 19-21, 21-15, 21-12 से एक रोमांचक मैच में हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। आकाशवाणी से बात करते हुए लक्ष्य सेन,
यही कहना चाहूंगा कि सेकेंड एंड थर्ड गेम में जैसा मैं खेला मैं खुश हूँ उससे, एंड यस मैं आगे आने वाले मैचेस में भी अपना मोमेंटम कैरी करना चाहता हूँ।
लक्ष्य सेन का सेमीफाइनल मुकाबला 4 अगस्त को टोक्यो ओलंपिक खेलों के स्वर्ण पदक विजेता और दूसरी वरीयता प्राप्त डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसन से होगा। पुरुष हॉकी में कल भारत ने म्यूनिख ओलंपिक खेलों के बाद पहली बार ऑस्ट्रेलिया को ओलंपिक खेलों में हराया। स्कोर रहा 3-2। 4 अगस्त को क्वार्टर फाइनल में भारत का मुकाबला होगा ग्रेट ब्रिटेन से। 25 मीटर पिस्टल शूटिंग के महिला वर्ग में 590 के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर रहकर मनु भाकर आज पेरिस ओलंपिक खेलों में अपने तीसरे पदक पर निशाना लगाएंगी। आज आर्चरी में भजन कौर के सामने होंगी इंडोनेशिया की दयानंदा चोरुनीसिया और दीपिका कुमारी के सामने होंगी जर्मनी की मिशेल क्रोपेन। ये दोनों महिला वर्ग का एलिमिनेशन राउंड का अगला मुकाबला खेलेंगी। सेलिंग में नेत्रा कुमानन और विष्णु सर्वनन डिंगी में आज अपनी 5वीं और 6ठी रेस लगाएंगे। मुक्केबाजी के 71 किलो के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज निशान देव का मुकाबला होगा मेक्सिको के मार्को अलोंसो वर्डे अल्वारेस से। महिलाओं की स्कीट निशानेबाजी में रईजा ढिलो और माहेश्वरी चौहान आज चैट्रो शूटिंग रेंज में अपने निशाने लगाएंगी। पेरिस से मैं महेंद्र सिंह लालस।
पूर्वी चंपारण जिले की महुआवा पंचायत की मुखिया सुनीता देवी को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से आमंत्रित किया गया है। सुनीता देवी को पंचायत में बेहतर विकास कार्य के लिए सम्मानित किया जाएगा। अब बिहार से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने नीट मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने इस खबर का शीर्षक लगाया है, नीट में धांधली नहीं हुई पर एनटीए सुधार करे। दैनिक जागरण ने मेट्रो से जुड़ी खबर को तरजीह देते हुए लिखा है, हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा और एयरपोर्ट भी जुड़ेंगे मेट्रो रूट से। दैनिक भास्कर ने ट्राई के नए नियम पर लिखा है, मोबाइल नेटवर्क गायब हुआ तो कंपनियां ग्राहकों को हर्जाना देंगी। प्रभात खबर ने ईडी की कार्रवाई को प्रमुखता देते हुए लिखा है, संजीव हंस और गुलाब यादव पर उत्पीड़न के आरोप में महिला से पूछताछ। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान औरंगाबाद, बांका, भागलपुर, गया, जमुई, कटिहार, मुंगेर, नवादा और रोहतास समेत 17 जिलों में तेज हवा के साथ अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में 32वें अंतर्राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्री सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इको पर्यटन के विकास के लिए नवादा जिले के ककोलत जलप्रपात में पर्यटकीय सुविधाओं का आज करेंगे लोकार्पण। और आकलन वर्ष 2024-25 के लिए 31 जुलाई तक रिकॉर्ड 7 करोड़ 28 लाख आयकर रिटर्न दाखिल किए गए। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।